Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Aradesh Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
जन श्वेताश्वतर उपनिषद के स्वाध्याय कर रहे हैं। कृष्ण यजुर्वेद तैतरीय शाखा के अंतर्गत यह उपनिषद है। श्वेताश्वतर शब्द के कई अर्थ आपने सुना ही होगा और इस उपनिषद के दृष्टा कहिए अथवा रचयिता श्वेताश्वतर ऋषि कहते हैं उनके उनका जो एक श्वेत अश्वतर शब्द का अर्थ है खच्चर जिसको बोलते हैं ना, घोड़े और गधे से जो जन्म लेता है, ऋषि के वैसा एक वाहन था और इसीलिए उस अनुसार उनका नाम श्वेताश्वतर। द्वितीय अर्थ और भी मिलता है, श्वेत शब्द का अर्थ है शुभ्र, शुक्ल, शुद्ध, और अश्वतर शब्द का अर्थ है इंद्रिय। तो पूरे अर्थ हो जाएगा संयतेन्द्रिय, ये भी एक अर्थ है। अर्थात इस श्वेताश्वतर उपनिषद के ऊपर शंकरानंद जी की एक टीका मिलती है, उन्होंने इस प्रकार के अर्थ किया कि जिनके इंद्रिय संयत है वो है श्वेताश्वतर। अर्थात इस नाम से ही निश्चय हो जाता है कि पूरे उपनिषद के प्रतिपाद्य क्या है। बाकी उपनिषद शब्द से जब भी परिचय होते हैं, खास करके ब्रह्म तत्व का ही विचार हमें मिलता है, परंतु श्वेताश्वतर उपनिषद में विशेष है कि इसमें आपको वेदांतियों की ब्रह्मवाद, पौराणिकों की पुराणवाद देववाद और यौगिक का योग, ये तीनों का एक संगम आपको मिलता रहेगा। केवल ब्रह्मवाद को लेकर के नहीं, इस ब्रह्मवाद को अथवा ब्रह्मास्तित्व को प्राप्त करने के लिए हमें जीववाद, ईश्वरवाद, जगतवाद, ये सब के साथ यह परिचय कराएंगे। और साथ साथ जीव कितना असमर्थ है उसको वो बारंबार याद दिलाता है, और उनके सामने कर्तव्य क्या है ये उपनिषद के ऋषि बारंबार दिखाते हैं और करने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसलिए इस उपनिषद के मुख्य तीनों के साथ परिचय हमें मिलता है। इस उपनिषद में 6 अध्याय है, आपको पता होगा। 6 अध्याय में अभी तो आपका संबंध भाष्य चल रहा है। 6 अध्याय में प्रथम अध्याय के जो प्रतिपाद्य विषय है वो है कि इस विश्व के आदि कारण कौन है। ऐसा तो हम जानते ब्रह्म है, ये है, परंतु वो जब हृदय से एक जिज्ञासा इस सारे विश्व प्रपंच के आदि कर्ता कौन है, ईश्वर है, ब्रह्म है, अनेक उत्तर हमारे पास है, परंतु उपनिषद के जो प्रतिपाद्य शैली है वो अद्भुत है। केवल उतना ही नहीं, ये जो जीव, ये जो मैं करने वाला जो अल्पज्ञ, कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी, जन्मने मरने वाला जो है, ये जन्म कहां से ये आया, कस त्वम, कौन हो, मौलिक प्रश्न का, जो कि मुझे लगता है कि अध्यात्म जीवन में शायद शुरुआत इसी से ही होती है। जिनके दिल में, हृदय में यह जिज्ञासा है कि मैं कौन हूं भाई, अगर कोई मुझे पूछे कि आप कौन है, आपको पूछे कि आप कौन है, तो आपके पास आंसर है ना, उत्तर है कि नहीं। मुझे तो एक धक्का मिला था, मैं कैसे वो गंगोत्री में पहुंचा, किसी खड़िया महात्मा जिसको हम बोलते हैं रास्ते में घूमते हैं चिमटा लेकर के, तो पहुंचे तो मैंने पूछा कि बाबा जी कहां से आए हैं, तो मेरे को एक झटके में उत्तर दे, वही तो ढूंढ रहा हूं। सच वही तो ढूंढ रहे हैं ना, सही परिचय क्या है मेरा, मैं कहां से आया भाई, कौन है आप तो बाद में, आपका परिचय क्या है। और इसका उत्तर जब अपने पास होता नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, घबराहट के मारे इसको एक बार पकड़ते, उसको एक बार पकड़ते, उसको एक बार पकड़ते, नाम से परिचय बता, अमुक नामा हूं, अमुक करता हूं। अरे ये तो आप अपने प्रोफेशन को बताइए, तो आपने नाम जो बताया ये तो दिया गया है, ओरिजिनल नेम क्या है महाराज। ये प्रथम अध्याय में एक अद्भुत रूप से कहां से यह जीव अथवा मैं आया, और उतना ही नहीं आया मानो इसका आंसर नहीं, कितना उत्तर रहित चीजों को लेकर के हम चल रहे हैं। बहुत कुछ हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने के प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु ऋषि एक दृष्टि देना चाहते हैं कि कुछ भी जानो, जब तक आत्म विषयक अज्ञान को दूर नहीं कर सकते हैं, इससे इतर कुछ भी जानो वो सब अपूर्ण ही अपूर्ण है। और अधिकतर समय हम दुनिया को जानना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परंतु खाली इधर ही होता है। इस बारे में स्व अस्तित्व के प्रबोधन के बारे में बिल्कुल जिज्ञासा है ही नहीं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, अगर आया भी हूं तो कौन रक्षा कर रहे हैं, ये भी एक प्रश्न इसमें आया है कि ठीक है जन्म कहां से मिला, कहां से आया, ये तो पता नहीं है, एक आंसर तो नहीं है, परंतु जन्म के बाद किसके द्वारा यह जीवन परिचालित है, इस जीवन के सारा दायित्व कर्तव्य आप स्वयं चला रहे हैं अथवा कोई और है। प्रथम अध्याय में यही विवेच्य विषय है कि जीव कहां से आया, अगर आ भी गया है तो इसको धारण करके चलाने वाला कौन है। देखिए आंसर अगर मिलता है कि ईश्वर है, परमात्मा, वो तो है, तो अंदर से फील होना चाहिए, नहीं तो ऊपर से तो हम भी मानते कि ईश्वर हमको चला रहे, ईश्वर के बिना हम चल नहीं सकते, पर तो अंदर कहीं ऐसे भी तो है, मैं भी कम और जिस दिन यह एकदम दृढ़ निश्चय हो जाए नारायण की ईश्वर ही चलाने वाला, तो वो व्यक्ति का जीवन बिल्कुल अलग अलग ही होगा ना, क्योंकि स्वयं के जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उसको हम अनायास दरकिनार कर नहीं सकते हैं अथवा करना नहीं चाहते, हालांकि औकात नहीं है, सामर्थ्य कुछ भी नहीं है, परंतु ये जो भ्रमवश मान बैठा है, ये भ्रांति का अपनोदन करना, यही उपनिषद का, तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई जीवन तो मिला, कहां से आया इसका कोई उत्तर नहीं है, और जन्मने के बाद किसके द्वारा ये जीवन चल रहा है इसका उत्तर है क्या। और फिर ठीक है ये जीवन मिला, जीवन के पूर्व में क्या है, जैसा एक दीवार है, कुछ भी पता नहीं है, जीवन मिला फिर जीवन के बाद वर्तमान जीवन, इसको कौन चला रहे, इसका भी कुछ उत्तर जानते कुछ नहीं जानते। फिर मृत्यु के बाद फिर वो जीव स्थिति है, रहने वाला है अथवा नहीं, यह प्रश्न भी दार्शनिक जगत में एक मुख्य प्रश्न है, इसका भी उत्तर, इसका भी विचार प्रथम अध्याय में श्वेता शतरु उपनिषद में किया गया है। और अनेक मत मतांतर का निराकरण करते हुए निश्चय एक ही है जो आप सब जानते हैं, सृष्टि स्थिति और प्रलय के जो यह है जन्माद्यस्य यतः, वो परब्रह्म परमात्मा। परंतु ये उत्तर को जब वो अपने साथ जीवन के साथ जुड़ करके देते हैं, जगत को बनाने वाला वही मेरे को बनाने वाला, दोनों में अंतर है, वही हमारे रक्षा करने वाला और प्रलय के बाद वही जाकर के सब कुछ लीन होने वाला, ये तत्व जो है प्रथम अध्याय में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया। और एक ही ब्रह्मवाद है, एक ही तत्व विद्यमान है, वही क्षर रूप में, अक्षर रूप में, ईश रूप में, अनीश रूप में, ज्ञ रूप में, अज्ञ रूप में, ज्ञानी के रूप में, अज्ञानी के रूप में, विवर्तन के अनेक अनेक भागों में वही बटा हुआ है, इसको दिखाया। और अंतिम अर्थात प्रथम अध्याय के अंतिम में जाकर के कि क्यों इस प्रथम अध्याय के प्रतिपाद्य विषय जो एक तत्व को जानने से ही इस जन्म मृत्युमय संसार से उसको मुक्ति मिलती है, अर्थात एक परमेश्वर का ही सारा संपूर्ण जगत चिद विलास है और वही इस जीव में भी कर्ता भोक्ता भोग्य भोक्ता के रूप में भी विभाग है। और सर्व उपाधि विवर्जित जो अस्तित्व है, सत्ता है, उसको जो जान लेते हैं इस जन्म मृत्यु संसार से, वो ये है फल कथन। इसलिए प्रथम अध्याय में मूल प्रश्न कि जीव कहां से आया, कौन इसको रक्षा करने वाले हैं और अंतिम स्थिति क्या है, और उत्तर देते हैं एक परब्रह्म परमात्मा है और उस परब्रह्म परमात्मा का ही सारा चिद विलास है, वही इस जीव शरीर में भी भोक्ता भोग्य भोग के रूप में विराजमान है। तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोहम सदाशिव, ये सब कठोपनिषद का होगा, मुंडक का। इसलिए इस रूप से जो सारे उपाधि विवर्जित रूप से प्योर जो सत्ता है, चैतन्य है, उसको जो जान लेते हैं और उन्हीं के जीवन में जन्म मृत्यु चक्र से वही पार जा सकता है। इसीलिए अन्य कितना भी अज्ञान के कारण ही दुख है, तो क्या दुख का कारण, मूल कारण है अज्ञान, और इस अज्ञान का कोई सीमा नहीं है, अनेक अज्ञान है। परंतु ऋषियों का कथन है कि अज्ञान को हम मिटाना भी चाहते हैं, छोटे मोटे अनेक अज्ञान को हम मिटाते हैं और उस हम सुखी होते हैं। तो मूल में जो मूल अज्ञान है, स्वात्म विषयक अज्ञान, वो नहीं मिटता। ये अगर आत्म विषयक अविद्या अज्ञान अगर मिट जाए तो बाकी सब छोटे मोटे जिसको हम हटाना चाहते हैं वो सब मिट जाता है। इसलिए स्वात्म अज्ञान को अगर कोई साधक हटा सकता है, फिर उनके जीवन में इस जन्म मृत्यु में जो बारंबार आना और जाना, इससे वो मुक्त हो जाते। द्वितीय अध्याय में खास करके योग विधि का वर्णन है और कुछ योग के उपदेश भी देते हैं, किस प्रकार आप प्राणायाम करें, किस प्रकार आप योगाभ्यास करें, कैसे आपके मन जो है ईश्वर में, परमात्मा में, परब्रह्म में लगाए, और ऐसा निर्देश देकर के अंतिम में लिखते हैं कि वो आत्म ज्योति जो स्वयं प्रकाशमान जो चैतन्य सत्ता है, जो एक सत्ता ही जीव के रूप में, वही सत्ता जगत के रूप में, और जीव जगत से अलग होकर के वही सत्ता विद्यमान है ना, गुण वाला गुण विशिष्ट भी वो है और निर्गुण रूप से सर्वोपाधि विवर्जित सत्ता भी वही है। ये जो आत्मा जो जीव बनकर के बैठा है, यही स्वयं प्रकाशमान चैतन्य योग के द्वारा ही निर्गुण निरुपाधिक अस्तित्व को जान पाएगा, अर्थात स्वात्म विज्ञान एक शब्द में अगर कहे तो यही जो जीव बन करके छोटा सा स्वयं प्रकाशमान आत्म तत्व ज्योति कह सकते हैं, इस ज्योति के द्वारा परब्रह्म परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए योगाभ्यास योगियों के द्वारा संभव है, और जो भी उस आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी योग साधना का वर्णन किया गया है। और दो अंतिम दो श्लोक के द्वारा उस परम ज्योति स्वरूप परमात्मा का स्वरूप वर्णन किया, और वही सर्वव्यापी है, सर्व अस्तित्व में वही भास रहे हैं, इस रूप से जानना। अर्थात योग के द्वारा ये जो चित्त वृत्तियों का जो निवृत्त तो करना है, अर्थात योग चित्त वृत्ति निरोध ऐसा सूत्र आया, तो चित्त वृत्तियों को निरोध कर देना ही ज्ञान है क्या? क्या है? हाँ, कई बार मन में ऐसा होता है ना, देख करके चित्त वृत्तियों को निरोध कर देंगे तो यही ज्ञान है ना। ज्ञान तो अलग है, चित्त वृत्तियों को आपने निरुद्ध किया, पर तो उसके बाद भी वेदांतियों का और अवकाश है। इसलिए द्वितीय प्रकरण के द्वारा सर्वव्यापित्व के जो अनुभव है और चित्त वृत्ति के विक्षेप का कारण, उसको हम जान नहीं पाते हैं। सर्वज्ञ सर्व विराजमान जो अस्तित्व है, योगाभ्यास के द्वारा साधक चित्त वृत्ति के जो इतर वृत्ति है उस इतर वृत्ति को मिटा करके ब्रह्म चैतन्य उधर वृत्ति को बनाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए एक विधि का वर्णन, उपासना परक वर्णन किया गया है। और इस उपनिषद में आपको उपासना के अनेक प्रकार के तत्व मिलने वाला है। अब लोगों ने अब तक जो भी पढ़ के आए हैं, बहुत कठिन और गूढ़ अर्थ को पहन पढ़ करके आए हैं, इसलिए आपको लगता भी होगा कि जो संबंध भाष्य क्या है ये सब तो हम जानते हैं, परंतु नारायण जानने पर भी अभ्यास की जरूरत है। और ये उपनिषद एक अद्भुत उपनिषद है। तृतीय अध्याय के प्रारंभ में ही प्रतिपादन कर रहे हैं कि ईश्वर अद्वितीय जो परब्रह्म है, वही निर्गुण निराकार अस्तित्व चैतन्य जब माया को साथ में लेती है तो ये सारे प्रपंच का विस्तार हो जाता है। अर्थात शुद्ध चैतन्य जहां किसी भी प्रकार के स्पंदन नहीं है, हलचल नहीं है, उस तत्व कैसे ही संसार को बनाया हमारा, तो वो जब माया को आश्रय करता था, माया को साथ में ले लेते हैं, तो अब प्रश्न मेरा ये है कि माया क्या ऐसे पड़ा है और ये चैतन्य ये जाकर के माया को ऐसे पकड़ा और तब जाकर के जगत को बनाने लग गया, ऐसा क्या है, क्या लगता है?